आने वाली पीढ़ियां शायद ये विश्वास न करें कि हार मास के एक ऐसे इंसान ने इस धरती पर अपने कदम रखे थे। महात्मा गांधी के प्रति 20वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की श्रद्धांजलि। दुनिया के इतिहास में एकमात्र ऐसे इंसान के प्रति श्रद्धांजलि जो अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता था कि मुझे अगला जन्म दलितों, शोषितों और निर्धनों के बीच देना, ताकि दरिद्र नारायण के रूप में मैं उनकी सेवा कर सकूं। नाम था उसका मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन साम्राज्यवादी विंस्टन चर्चिल के शब्दों में वो एक नंगा फकीर था। भारत की जनता प्यार से उसे बापू कहती थी, उसके निष्ठावान अनुयायी उसे महात्मा कहते थे और देशभक्तों के लिए वो था राष्ट्रपिता। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में वो भारत के जीवन का प्रकाश था, और 40 बरस पहले आज ही के दिन हमारे जीवन का वो प्रकाश बुझ गया था। आइए देखें कैसे घटा 30 जनवरी 1948 का वो दिन।
तीस जनवरी 1948, महात्मा गांधी के जीवन की अंतिम सुबह।
सुबह के 3:30 बजे हैं। गांधी जी ने आंखें खोली और मनुबेन को जगाया। घड़ी के साथ जीने का ये क्रम दक्षिण अफ्रीका के दिनों से ही चला आ रहा है।
नित्य कर्म के बाद बिड़ला हाउस में कुछ गिने चुने अनुयायियों के साथ गांधी जी की अंतिम प्रार्थना आरंभ होती है। एक महिला सोती रह गई है, नाराजगी मनु पर उतरती है।
यदि वो प्रार्थना में शामिल नहीं हो सकती तो बेहतर है कि वो मेरी छत के नीचे रहना छोड़ दे। प्रार्थना तो उस झाड़ू की तरह है जिससे हम अपनी आत्मा की सफाई करते हैं।
उत्तेजना के कारण वे खांसने लगते हैं। अभी 12 दिन पहले ही तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने ये उपवास किया था। तब कुल 107 पाउंड वजन रह गया था उनका, और खांसी है कि अब तक पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। उस अनुपस्थित महिला से वे अब भी नाराज हैं।
मुझे ये लक्षण भले नहीं लगते। अब तो बस यही इच्छा है कि भगवान ये सब देखने के लिए मुझे जिंदा ना रखे।
प्रार्थना शुरू होती है गीता के इस श्लोक से।
हे अर्जुन, जो जन्मे हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनका जन्म निश्चित है। ये अवश्यंभावी है, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए।
चेहरे पर थकान और आंखों में बेचैनी लिए वे मनु से एक पुराने गुजराती भजन का आग्रह करते हैं, जिसका भावार्थ है,
विश्राम न कर, विश्राम न कर, संघर्ष के पथ पर बढ़ता जा, विश्राम न कर, उलझी हुई राहों में दुखियों का सहारा बनता जा, विश्वास न खो, विश्राम न कर।
प्रार्थना समाप्त हो चुकी है, चारों ओर अब भी अंधेरा है। खांसते हुए गांधी जी को मनु उनके कमरे की ओर ले जा रही है। उसने एक मोटे से कंबल में गांधी जी को लपेट दिया है। दोनों ओर बिजली के 2 हीटर लगा दिए हैं। गर्माहट महसूस करते ही मानो उनमें शक्ति लौट आई है, और फिर वो कल रात लिखे कागजों में डूब जाते हैं।
ये सामान्य चिट्ठी पत्रियां नहीं हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर भारत के भविष्य की गांधीवादी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। स्वयं गांधी जी और उनके सचिव प्यारे लाल ने कल रात ही तो लंबे दस्तावेज को तैयार किया था।
अपने जीवन के इन अंतिम क्षणों में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भविष्य के लिए एक नया सपना देख रहे हैं। उसी कांग्रेस के लिए जो कभी शिक्षकों, वकीलों और व्यापारियों की संस्था थी और मात्र शहरी संभ्रांत वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी।
और जब 20वीं शताब्दी के 2रे दशक में उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला था तो उन्होंने कांग्रेस को आम जनता की संस्था बनाने का संकल्प लिया था। कांग्रेस के संदेश को उन्होंने ग्रामीण जनता तक पहुंचाया था।
गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष किया था।
गांधी जी कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे, एक नई सामाजिक चेतना का प्रतीक मानते थे। कांग्रेस ने भारत के राजनीतिक स्वरूप को बदला था और गांधी जी का विश्वास था कि बदलते हुए स्वतंत्र भारत में कांग्रेस को भी बदलना होगा।
29 जनवरी गांधी जी के जीवन की ये आखिरी रात थी और उस रात को वे अपने सचिव प्यारेलाल के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए एक नया संविधान लिखते रहे थे। कांग्रेस को भंग करके वे उसे एक लोक सेवक संघ का स्वरूप देना चाहते थे।
नए संविधान की रूपरेखा में उन्होंने लिखा था कि वर्तमान स्वरूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उपयोगिता समाप्त होती जा रही है। भारत के 7 लाख गांवों को अब सामाजिक, नैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है।
लोकतंत्र की ओर प्रगति के मार्ग में नागरिक सत्ता का सैनिक शक्ति के साथ संघर्ष भी हो सकता है।
कांग्रेस को सत्ता की अस्वास्थ्यकर दौड़ से अलग रहना होगा।
अतः अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को भंग करके एक लोक सेवक संघ की स्थापना की जानी चाहिए।
लोक सेवक संघ की मूल इकाई ग्रामीण पंचायत होगी। संघ के कार्यकर्ता को अपने हाथ से बुनी खादी के वस्त्र पहनने होंगे, छुआछूत का परित्याग करना होगा, सभी धर्मों का समान आदर करते हुए समाज में सांप्रदायिक एकता के लिए कार्य करना होगा तथा धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव के बिना प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और समान अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना होगा।
30 जनवरी ये महात्मा गांधी के जीवन की अंतिम सुबह है। रात का सर्द अंधेरा आखिरी करवट ले रहा है और वे स्वयं कांग्रेस के संविधान में अंतिम संशोधन कर रहे हैं। सुबह के 4:45 बज चुके हैं। गुनगुने पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर मनु ले आई है, जिसे पीकर गांधी जी लेट गए हैं। उनकी आंख लग गई है, पिछले उपवास ने उन्हें शक्तिहीन कर दिया है, बहुत कमजोर हो गए हैं वे।
नहीं, गांधी को कमजोर कहना गांधी के साथ अन्याय होगा।
आधा घंटे की झपकी के बाद वे फिर जाग गए हैं। मनु से चिट्ठियों की फाइल मंगवाते हैं। वे सेवाग्राम जाने की योजना बना रहे हैं, इसलिए सेवाग्राम वासियों को सूचित करने के लिए कल रात उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जो अब फाइल में नहीं मिल रही है।
बेचारी मनु को एक और फटकार सहनी पड़ती है। वो कहती है,
लेकिन बाबू, हो सकता है कि चिट्ठी से पहले हम ही सेवाग्राम पहुँच जाए।
वे झुंझलाकर कहती हैं,
किसे खबर है कल की, कौन जाने कल क्या होगा।
बिरला हाउस के बाग में थोड़ी देर टहलने निकल जाते हैं। वक्त गुजर रहा है, घड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है। सुबह के 8 बजे हैं। स्नान से पहले मालिश का समय हो गया है। मालिश के दौरान वे अखबारों पर नजर डालते हैं। स्नान घर की ओर जाते हुए कांग्रेस के नए संविधान की प्रति अपने सचिव प्यारेलाल को थमाते हुए गांधी जी कहते हैं,
गौर से देख लेना इसे, कहीं कोई भूल ना रह गई हो। मैंने इसे भारी तनाव में लिखा है। और हाँ, मद्रास के खाद्य संकट का क्या हुआ? खाद्य मंत्रालय चिंतित था। मेरे ख्याल में तो मद्रास जैसे राज्य में जहाँ कुदरत ने नारियल, केले और मूंगफली जैसी चीज़ें दी हों, वहाँ तो खाने पीने की चीज़ों की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोगों को ये बताने की जरूरत है कि साधनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए।
स्नान के बाद गांधी जी का वजन लिया गया, 109 पाउंड। उपवास के बाद से 2 पाउंड वजन बढ़ गया है। स्वास्थ्य सुधर रहा है, लेकिन खांसी में फर्क नहीं है। रात में तो चैन नहीं लेने देती। शायद लौंग का चूर्ण देने से कुछ आराम हो, और मनु कुछ लौंग पीसने चली जाती है। लौटने पर गांधी जी उससे कहते हैं,
रात से पहले क्या होने वाला है कौन जाने, मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं, और यदि मैं रात तक जिंदा रहा तो तुम इसे तैयार कर लेना।
क्या युगदृष्टा गांधी को अपनी मौत का एहसास हो चला है?
9:30 बज चुके हैं। ये उनके सुबह के भोजन का वक्त है। बकरी का दूध, उबली हुई सब्जियां, टमाटर, संतरा, नींबू और अदरक का रस।
भोजन के बाद प्यारेलाल के साथ कांग्रेस के संविधान पर एक बार फिर विचार विमर्श होता है। प्यारेलाल ने कुछ संशोधन सुझाए हैं, और हाँ, पंचायत के सदस्यों की संख्या के हिसाब में भी एक गलती रह गई थी जिसे अब ठीक कर दिया गया है।
और फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में जलते नोआखाली की स्थिति पर विचार विमर्श किया। गांधी जी प्यारे लाल को नोआखाली भेजना चाहते हैं, जहां ऊपरी तौर पर तो स्थिति शांत है, लेकिन भीतर आक्रोश सुलग रहा है। गांधी जी का विचार है कि नोआखाली के लोगों को अपने घर बार नहीं छोड़ने चाहिए। दृढ़ता, साहस, आत्मसम्मान और अहिंसा के साथ उन्हें दंगाइयों का सामना करना चाहिए। अहिंसा के साथ ही शांति की स्थापना हो सकती है।
घड़ी ने सुबह के 10:30 बजाए हैं। गांधी जी चारपाई पर विश्राम कर रहे हैं और साथ ही वे बंगला भाषा में पाठ दोहरा रहे हैं। अपनी नोआखाली यात्रा के दौरान उन्होंने बंगला सीखनी शुरू कर दी है और जब भी समय मिलता है वे बंगला का अध्ययन करते हैं।
जिंदगी के अंतिम क्षणों में वे जिंदगी से कुछ और सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
तीस जनवरी बिरला हाउस में ही नहीं कहीं और भी घट रही है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नंबर 6 रिटायरिंग रूम में भारतीय इतिहास के सबसे बड़े षड्यंत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इस षड्यंत्र के पीछे असली दिमाग है नारायण आपटे का। कट्टरपंथी आपटे पूना से प्रकाशित हिंदू राष्ट्र नामक समाचार पत्र का प्रबंधक है और इस समाचार पत्र का संपादक है 39 वर्षीय नाथुराम विनायक गौड़से।
रिटायरिंग रूम नंबर 6 में उपस्थित एक और व्यक्ति भी है, पूना में एक छोटे से होटल का मालिक विष्णु करकरे। यूं षड्यंत्र में कुछ और लोग भी शामिल हैं।
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले ये लोग गांधी जी की धर्मनिरपेक्ष नीतियों के दुश्मन हैं। अखंड भारत के निर्माण के लिए कृत संकल्प ये लोग भारत के विभाजन, उसके कारण होने वाली हिंसा के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार मानते हैं।
20 जनवरी को उनके एक साथी मदनलाल पाहवा ने गांधी जी की प्रार्थना सभा में बम फेंक कर हत्या करने का असफल प्रयास किया था। पाहवा की गिरफ्तारी के बाद ये लोग पुलिस से छिपने और जल्द से जल्द गांधी जी की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं।
कुछ देर हल्की फुल्की सामान्य बातचीत के बाद गांधी जी की हत्या की योजना पर विचार आरंभ होता है। 20 जनवरी के बाद गांधी जी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। समस्या है कि उसे कैसे भेदा जाए।
गौडसे का विचार है कि पुरानी किस्म का एक ऐसा कैमरा खरीदा जाए जिससे फोटोग्राफर एक काली चादर से अपने आप को वो कैमरे को ढककर फोटो खींचता है। वो उस कैमरे को लेकर प्रार्थना सभा में जाए, फिर फोटो खींचने के बहाने काली चादर के भीतर से गांधी जी पर गोली चला दी।
गौडसे, आपटे और करकरे कैमरे की तलाश में निकलते हैं। स्टेशन के बाहर एक फोटोग्राफर को देखकर नारायण आपटे इस विचार का विरोध करता है। उसका कहना है कि अब इन पुराने कैमरों का प्रयोग कोई नहीं करता है।
तीनों रिटायरिंग रूम में लौट आए हैं। फिर विचार किया गया कि नाथुराम गौडसे एक बुर्का पहनकर गांधी जी की सभा में जाए। अनेक मुस्लिम महिलाएं प्रार्थना सभा में जाती हैं और बैठने के लिए उन्हें जगह भी गांधी जी के निकट दी जाती है।
तीनों एक बुर्का खरीद कर लाते हैं। नाथुराम को बुर्के में कठिनाई हो रही है, उसे डर है कि कहीं उसका पैर ना अटक जाए। फिर बुर्के के भीतर से गोली कैसे चलाई जाएगी और यदि कहीं बुर्के में पकड़ा गया तो बेइज्जती अलग होगी, इसलिए बुर्के का विचार भी छोड़ दिया गया।
अंत में नारायण आपटे ने सुझाया कि क्यों ना सिपाहियों जैसा एक ढीला ढाला सूट खरीद लिया जाए। लंबी शर्ट के कारण पैंट की जेब में छिपी पिस्तौल दिखाई भी नहीं देगी। फिर बाजार जाकर नाथुराम के लिए एक ऐसा सूट खरीदा गया।
रिटायरिंग रूम छोड़ने का समय हो चुका है। नाथुराम ने अपनी पिस्तौल में गोलियां भर ली हैं और वे रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में जाकर शाम का इंतजार करने लगे। तीनों तनावग्रस्त लग रहे हैं। शायद भीतर के तनाव को छिपाने के लिए गौडसे ने मूंगफली खाने की इच्छा व्यक्त की और आपटे मूंगफली लेने चला गया है।
उधर बिड़ला हाउस में विभिन्न लोगों और प्रतिनिधि मंडलों से विचार मंत्रणा में गांधी जी का समय बीत रहा है।
डॉक्टर गोपीचंद भार्गव दिल्ली में एक अनाथालय की स्थापना के बारे में गांधी जी से सलाह ले रहे हैं।
थोड़ी देर बाद दिल्ली के मौलानाओं का एक दल उनसे मिलने आता है। दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में उन्हें जो सफलता मिली है, मौलाना उसके लिए आभार प्रकट करते हैं और पूछते हैं कि वे सेवाग्राम से दिल्ली फिर कब आएंगे।
शायद अगले महीने की 14 तारीख तक, लेकिन ये तो भगवान की मर्जी पर है। कौन जाने मैं दिल्ली से रवाना हो भी सकूं या नहीं।
इस अनिश्चय भरे उत्तर से नजदीक बैठे लोग चौंकते हैं। इससे पहले उन्होंने गांधी जी को अनिर्णय की स्थिति में कभी नहीं देखा था। गांधी जी ने अपने एक और सहायक बिशन को बुलाया।
भाई जरा मेरी जरूरी चिट्ठियां तो लाओ, मुझे आज ही उनके जवाब देने हैं, हो सकता है मैं कल रहूं या न रहूं।
सुबह से चौथी बार उन्होंने अनिश्चित भविष्य का संकेत दिया है। शायद मौत को नजदीक आते हुए उन्होंने देख लिया है।
इस बीच डॉक्टर गोपीचंद भार्गव ने अनाथालय की बात फिर उठाई है, और जब सरकार से मदद की बात आती है तो वे झुंझला उठते हैं।
आखिर मेरे भय से सरकार कब तक काम करेगी? भले कामों के लिए उन्हें मेरे भय से नहीं बल्कि अपने आप पहल करनी चाहिए।
सत्ता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के नेताओं के व्यवहार में जो परिवर्तन आया था उसके कारण गांधी जी पीड़ा का अनुभव करते रहे हैं। सामान्य जन की सेवा का व्रत लेने वाले कांग्रेसी नेता जनता से उतने ही दूर होते जा रहे हैं जितनी दूर अंग्रेज शासक हुआ करते थे। लोग अपने कष्ट लेकर सुनवाई के लिए भारत की सर्वोच्च अदालत गांधी जी के पास न्याय के लिए आने लगे हैं। पतले दुबले गांधी की धीमी आवाज भारत की संपूर्ण सत्ता से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लोग ये भली भांति जानते हैं।
महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करते रहे हैं। बढ़ती खांसी में भी उन्होंने पेंसिलिन लेने से इनकार कर दिया है। दोपहर के समय प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार उनके पेट पर मिट्टी की पट्टी रखी जाती है और साथ ही मिलने वालों का क्रम भी चल रहा है।
श्रीलंका से डॉक्टर डिसिल्वा मिलने आए हैं। उनकी बेटी ने गांधी जी से ऑटोग्राफ का आग्रह किया है। शायद ये गांधी जी द्वारा लिखे गए अंतिम शब्द हैं।
एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर गांधी जी को उनके पुराने फोटो की एल्बम भेंट करने आया है।
उसके बाद अमरीकी फोटोग्राफर मार्गरेट बर्क वाइट मिलने आई है। विडम्बना ये कि भेंट वार्ता के बाद उन्होंने भी गांधी जी के जीवन के अंतिम चित्र नहीं लिए। इस प्रकार लगभग 30 व्यक्ति उनसे मिल चुके हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भेंट अभी बाकी है। एक ऐसी भेंट जो नवोदित भारत के इतिहास को दिशा भ्रम से बचाएगी, विभाजन की संभावनाओं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रक्षा करेगी और जवाहरलाल नेहरू की सरकार को एक नई शक्ति प्रदान करेगी।
चार बजे का समय हो गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से मिलने आए हैं।
पिछले दिनों नेहरू और पटेल के बीच गंभीर मतभेद की खबरें अखबारों में छपती रही हैं।
सरदार पटेल को अपने गृह मंत्रालय के कामकाज में जवाहरलाल जी का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में संयोजक और संरक्षक की भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन सरदार पटेल का कहना है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत प्रधानमंत्री को फर्स्ट अमंग इक्वल्स माना जाना चाहिए, अर्थात मंत्रिमंडल के सभी सदस्य समान हैं और प्रधानमंत्री केवल उनकी अगुवाई करता है।
जवाहरलाल नेहरू को अपने अधिकारों की ये सीमित परिभाषा स्वीकार नहीं है, और 6 जनवरी को एक पत्र में उन्होंने गांधी जी को लिखा था,
नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए, और यदि यह संभव नहीं तो एक ही विकल्प बचता है, मुझे या सरदार पटेल में से किसी एक को मंत्रिमंडल छोड़ना होगा।
नेहरू और पटेल के मतभेदों को लेकर समस्त देश में चिंता व्याप्त है। हिंदू मुस्लिम हिंसा की आग अब भी लगी हुई है। देश में भारी अव्यवस्था है। देसी रियासतों का एकीकरण अधर में लटका हुआ है। संविधान अभी पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान के असहयोग भरे रुख से भारत सरकार चिंतित है। ऐसे में पटेल और नेहरू की आपसी लड़ाई देश के हित में नहीं है।
गांधी जी यही समझा रहे हैं सरदार पटेल को। लॉर्ड माउंटबेटन से भी वे इस बारे में बात कर चुके हैं और प्रार्थना सभा के बाद नेहरू और मौलाना आजाद को बुलवाया है उन्होंने।
शाम को दिन छिपे से पहले खाने की आदत है गांधी जी को।
आभा ने बकरी का दूध, उबली सब्जियों का रस और कुछ संतरे लाकर उनके सामने रख दिए हैं। खाने के दौरान पटेल से बातचीत जारी है। खाने के बाद वे चरखे पर बैठ जाते हैं। हाथ से बुनी खादी उनके जीवन का धर्म और भारत के स्वावलंबन की प्रतीक बन गई है।
उन्होंने पटेल से सरकार न छोड़ने का वचन ले लिया है।
एक पिता की तरह वे अपने बच्चों को झगड़ता हुआ नहीं देख सकते।
तभी कमरे में आकर मनु कहती है,
बापू काठियावाड़ से कांग्रेस के दो नेता आपसे मिलने आए हैं।
उनसे कहो कि जब मैं प्रार्थना के लिए जाऊं तो मुझसे बात कर लें।
पटेल के साथ बातचीत जारी है। 5 से ऊपर हो चुके हैं। आभा और मनु इस महत्वपूर्ण बातचीत में विघ्न डालने का साहस नहीं जुटा पा रही। मनु घड़ी की ओर इशारा करती है। गांधी जी की पुरानी इंगरसोल घड़ी 5:10 बजा रही है।
आश्वस्त होकर वे पटेल को विदा करती हैं। सन 1917 में जब उन्होंने भारत के राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की थी तो पटेल ही उनके पहले निष्ठावान अनुयायी बने थे, और अब 30 जनवरी 1948 को पटेल ही गांधी जी से अंतिम विदा ले रहे हैं।
मनु और आभा के कंधों का सहारा लेकर वे प्रार्थना सभा की ओर चल दिए हैं। काठियावाड़ से आए नेता भी उनके पीछे हो लिए हैं, लेकिन देरी हो जाने के कारण गांधी जी के पास उनसे बातचीत का वक्त नहीं है।